بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے، تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से ये कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, बहमन की 13, रजब की 11 और फरवरी की 2 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक विशेष कार्यक्रम, और अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात। तो दोस्तों, हमारे ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के पास इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार, सुरक्षित है। IRGC के चीफ कमांडर ने कहा है कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। अजहर गैंगरेप की रिपोर्टिंग करने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन 28 महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए हैं। चीन को घेरने की योजना के तहत अमेरिका ने 2 और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत ने इस्फहान स्थित सैन्य वर्कशॉप पर ड्रोन हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि तेहरान के पास तेल अवीव के किसी भी हमले या गलती का जवाब देने का अधिकार, सुरक्षित है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में ईरानी राजदूत अमीर सईद एरवानी ने लिखा कि प्रारंभिक जांच से प्राप्त होने वाले संकेतों से पता चलता है कि इस्फहान में हुए हमले के लिए इसराइल जिम्मेदार है। गौरतलब है कि पिछले रविवार को ईरान के इस्फहान शहर स्थित सैन्य कारखाने पर 3 ड्रोन विमानों से हमला किया गया था, जिसमें से 2 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इरवानी का कहना था कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के मुताबिक इस तरह के हमले का जवाब देने और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं समेत ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन है, जबकि ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विध्वंसक और आतंकवादी कार्रवाइयों में इसराइल के शामिल होने की बात स्वीकार की है।
IRGC के सीनियर कमांडर ने कहा कि हम दुश्मन के घर के अंदर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और हर तरह की धमकियों का सामना कर चुके हैं। اب ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ IRGC کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی نے تہران میں ایک کارکرم میں اپنے سمبودھن میں ایران کی بڑھتی رکشا شکتی، ارجا اور علاقے میں ایران کی مضبوط ستھی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یدھ اب آرتھک اور سانسکرتک روپ دھارن کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یدپی دشمنوں نے ہمارے ویگیانکوں کو نشانہ بنایا اور آرتھک بہشکار کر کے ایرانی راشٹر کو مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سبھی یوجنائیں وفل رہیں۔ جنرل سلامی نے اسلامی کرانتی کی سفلتا کی ورشگانٹھ پر بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ ایک سمے تھا جب کھیتر میں اپنی وشیش سامرک ستھتی کے کارن ایران امریکہ کے وسطاروادی لکشوں کو پراپت کرنے کا کیندر تھا، لیکن امریکی کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ ایران ان کے راجنیتک دائرے سے اس طرح سے باہر نکل جائے گا۔
دلی ست کیرل کے پیشیور پترکار صدیق کپن، جنہیں 5 اکتوبر 2020 کو ہاترس گینگ ریپ کانڈ کی رپورٹنگ کرتے وقت یو پی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، لگ بھگ 28 مہینوں کے بعد جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد انہیں UAPA کے تحت جیل میں رکھا گیا اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور آتنکوادی سنگھٹنوں سے سمبندھ رکھنے جیسے گمبھیر آروپ لگائے گئے۔ گروار کو لکھنؤ کی سیشن کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی تھی، جس کے بعد گروار کو انہیں لکھنؤ کی ضلع جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پچھلے سال ستمبر میں سپریم کورٹ نے انہیں سبھی معاملوں میں ضمانت دے دی تھی، لیکن انہیں منی لانڈرنگ کے کیس میں ضمانت نہیں مل پائی تھی اور وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے تھے۔ اس کے بعد دسمبر 2022 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 کے ٹرانسفر کے علاوہ کسی طرح کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد جب ان سے ان کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاترس میں ایک دلت لڑکی کے ساتھ ساموہک بلاتکار ہوا اور اس کے شو کو بنا اس کے پریوار کی اجازت کے جلا دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی گھٹنا تھی، اس لیے وہ اس کی رپورٹنگ کرنے وہاں گئے تھے، جو ہر پترکار کا ادھیکار ہے۔
بھارت کی وت منتری نرملا سیتارمن نے بدھوار کو سنسد میں وت ورش 2023-24 کا بجٹ پیش کیا۔ اگلے سال ہونے والے عام چناؤ سے پہلے نریندر مودی سرکار کے انتیم پورن بجٹ میں سبھی طبقوں کو سادھنے کا پریاس کیا گیا۔ حالانکہ وپکشی دلوں نے بجٹ کو نراش جنک، پوری طرح سے وفل اور لوگوں کی امیدوں کے ساتھ وشواس گھات قرار دیا ہے۔ کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندھی نے بجٹ کو مترکال بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس بھارت کے بھوشیہ کے نرمان کی کوئی روپ ریکھا نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ 1% سب سے امیر لوگوں کے پاس، 40% سمپتی ہے، 50% غریب لوگ، 64% GST دیتے ہیں، 42% یوا بے روزگار ہیں، اس کے بعد بھی پردھان منتری کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کانگریس ادھیکش ملک ارجن کھرگے نے آروپ لگایا کہ مودی سرکار کا بجٹ بھارتیہ جنتا پارٹی پر جنتا کے لگاتار گرتے وشواس کا ثبوت ہے تتھا اسے صرف چناؤ کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ کانگریس کے ورشٹھ نیتا ایون پورو وت منتری پی چدمبرم نے دعویٰ کیا کہ کیندریہ بجٹ نے دیش کے زیادہ تر لوگوں کی امیدوں کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے۔ راجستھان میں ستاروڑھ کانگریس کے نیتاؤں نے کیندریہ بجٹ کو راجستھان کے لحاظ سے نراش جنک بتایا ہے۔ مکھیہ منتری اشوک گہلوت نے عام بجٹ کو راجستھان کے لیے گھور نراش جنک قرار دیتے ہوئے اسے راجیہ کی جنتا کے ساتھ سوتیلا ویوہار قرار دیا ہے۔ پردیش کانگریس ادھیکش گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے کہا کہ بجٹ بہت نراش کرنے والا ہے اور راجستھان کو اس میں کچھ نہیں ملا ہے۔
اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے ایک پرتیرودھی ابھیان میں زخمی ہونے والے ایک زائونی ناگرک کی موت ہو گئی ہے۔ گروار کو فلسطین الیوم ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سینا نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ 9 مہینے پہلے ایلاد کارروائی میں زخمی ہونے والے 75 ورشیہ زائونی شمون ماتوف کی موت ہو گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ 5 مئی 2022 کو فلسطینی پرتیرودھیوں نے تیل اویو کے پورب میں استھت اویدھ زائونی بستی ایلاد میں پرتیرودھک کارروائی کی تھی، جس میں 3 زائونی ہتاحت اور 9 انیہ زخمی ہو گئے تھے۔ اب شمون کی موت کے ساتھ ہی اس ابھیان میں مرنے والے زائونی کی سنکھیا 4 ہو گئی ہے۔ اس ابھیان کو اسرائیل کی جیل میں قید رہنے والے 2 فلسطینی پرتیرودھیوں صبحی صحیحات اور اسد رفائی نے انجام دیا تھا۔ आए दिन इसराइली सैनिक विभिन्न बहानों से फिलिस्तीनी नागरिकों को शहीद करते रहते हैं। इसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने भी प्रतिरोधी अभियानों में वृद्धि कर दी है, जिससे ज़ायनियों में भय व्याप्त है।
गजा पट्टी पर इसराइल ने हवाई हमला किया, जिसका फिलिस्तीनियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायनी शासन के युद्धक विमानों ने आज सुबह गजा पट्टी के कुछ इलाकों पर बमबारी की, जिसका फिलिस्तीनियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसराइल के हमलों के जवाब में फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों ने गजा के आसपास की बस्तियों पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद सायरन बजने लगे। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों और तकनीकों का उपयोग करके रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति की है, जो पिछले साल के युद्धों में देखी गई। मई 2021 में प्रतिरोधकर्ता बलों ने गजा और मस्जिद अल अक्सा पर ज़ायनी शासन के हमलों के जवाब में 4000 रॉकेट और मिसाइलों से तेल अविव सहित दर्जनों ज़ायनी शहरों और कस्बों को निशाना बनाया और ज़ायनी अधिकारियों को युद्ध विराम पर मजबूर कर दिया।
मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था के मुताबिक सऊदी सैनिकों ने देश के शिया बहुल इलाकों अल अवामिया और अल कतीफ में बख्तरबंद गाड़ियों से घुसकर लोगों में दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग की। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि सऊदी सैनिकों ने कम से कम 10 शिया युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अदालत के आदेशों और वारंट के बिना की गई इन गिरफ्तारियों का उद्देश्य देश की शिया आबादी को आतंकित करना बताया जा रहा है, जो लंबे समय से अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं।
अमरीका ने चीन का मुकाबला करने की योजना के तहत सोलोमन द्वीप में फिर से अपना दूतावास खोल दिया है। गुरुवार को 30 साल बाद सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा में अमरीकी दूतावास ने काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले शीत युद्ध के बाद 1993 में अमरीका ने इस द्वीप में अपने दूतावास को बंद कर दिया था। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और ताइवान को लेकर उसके आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए अमरीका लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी कोशिश के तहत उसने फिलीपींस के साथ इस देश के 4 अन्य सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने का समझौता भी किया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब में लगातार सजाए मौत के बढ़ते आंकड़ों के बारे में,
यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संघ,
और फिर बात करेंगे यूक्रेन समर्थन को लेकर दो भागों में बटे अमरीकी समाज के बारे में,
अमरीका के NBC टीवी,
और अंत में चलेंगे भारत, जहां राजधानी दिल्ली में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी में ईरानी कंपनियों की मची धूम के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
ब्लास्ट इंडिया नामक विश्व में
तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब में मौत की सजाओं में हो रही बढ़ोतरी और मानवाधिकार का दम भरने वालों की खामोशी के बारे में। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन ने, जो सजाए मौत का विरोध करता है, एक रिपोर्ट में घोषणा की है कि सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासन के दौरान मौत की सजा ہر سال لگ بھگ دوگنی ہو گئی۔ بن سلمان کے شاسن کال کے دوران مرتیو دنڈ کی اوسط سنکھیا سلمان اور ان کے پتا کے شاسن کال کی تلنا میں 82% کی وردھی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں سعودی عرب نے 147 لوگوں کو سزائے موت دی تھی اور یہ آنکڑا پچھلے 2 سالوں کی کل سزا سے زیادہ تھا جو 21 معاملے تھے۔ ان 147 لوگوں میں سے 81 لوگوں کو مارچ میں ایک ہی دن میں سزائے موت دی گئی تھی۔ مارچ 2022 سعودی عرب کے اتہاس میں ساموہک سزائے موت کے لیے مانا جاتا ہے اور اس پر انتراشٹریہ استر پر نندا بھی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے انوسار 2021 اور 2022 میں دی گئی سزاؤں میں 119% کی وردھی ہوئی ہے اور ان آدیشوں کو جاری کرنے میں ورش 2020 سے 2022 تک 444% کی وردھی ہوئی ہے۔ آدھیکارک مانواڈھیکار کیندر کے انوسار 2020 میں 27 اور 2021 میں 67 لوگوں کو سزائے موت دی گئی۔ سعودی عرب کی پارمپرک اور دھارمک بناوٹ کے انوسار جب سے دیش بنا ہے تب سے سزائے موت کا وجود رہا ہے، لیکن تب سزائے موت کی سنکھیا اتنی ادھک نہیں تھی۔ دوسری بات، اتیت میں اور محمد بن سلمان دوارا ستا پر قبضہ کرنے سے پہلے تک سزائے موت کا ایک دھارمک پہلو تھا اور شریعہ قانونوں کو لاگو کرنے کا پریام رہا، لیکن بن سلمان کے ستا حاصل کرنے کے بعد سزائے موت کا آیام ہی بدل گیا کیونکہ سعودی راجنیتک ویوستھا کے دھارمک آیام کاریانوین کے کارن مول روپ سے کمزور ہو گئے اور بن سلمان کے آدھونکی کرن اور دھرم نرپیکش کارکرموں کے وپریت سزائے موت کے راجنیتک آیام بڑھ گئے اور اب ادھکانش سزائے موت راجنیتک کارنوں سے یا زیادہ تر بن سلمان کی آلوچکوں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس سندر میں الیکھنی بندو یہ ہے کہ پشچیمی دیش عام طور پر ان سزائے موت پر ہی پرتکریائیں دیتے ہیں جن کا دھارمک پہلو ہوتا ہے، لیکن اب جبکہ ادھکانش سزائے موت راجنیت سے پریرت ہوتی ہیں تو پشچیمی دیش بھی خاموش ہی رہتے ہیں۔ ان سزائے موت کو بن سلمان دوارا ویرودھیوں کو ختم کرنے کے ایک سادھن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے۔ پشچیمی دیش بھی اس پر خاموش ہی نظر آتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی دباؤ بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ سعودی عرب کے ویرودھی پترکار جمال خاشقجی کی ہتیا کے دوران دیکھا گیا۔ اس کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ بن سلمان کے ستا میں آنے کے بعد سعودی عرب میں سزائے موت کی تعداد بڑھنے کا ایک کارن پشچیمی دیشوں اور انتراشٹریہ منچوں کا دوہرا برتاؤ بھی ہے۔ یہ دیش اور سماج یا تو ان سزائے موت پر چپ ہیں یا اپنے ان خبروں کے سامنے آنے کو بھتا لینے کے روپ میں پریوگ کرتے ہیں۔
اور اب چرچا کرتے ہیں یوکرین یدھ کے بارے میں۔ ایک اور امریکہ اور پشچمی دیش یوکرین کو لگاتار سینیہ سہایتا دے رہے ہیں تو وہیں اب امریکی سماج جنگ کا سمرتھن کرنے پر دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس بارے میں ادھک جانکاری دے رہے ہیں نیو یارک سے IRIB سنواد داتا علی رجبی، ہمارے ساتھی احمد عباس کی آواز میں۔
امریکہ کے NBC TV چینل نے جو ادھین کیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یوکرین کا سپورٹ کرنے کے سوال پر امریکی سماج دو بھاگوں میں پوری طرح بٹ چکا ہے۔ چینل نے بتایا کہ 49% سپورٹ دیے جانے کے پکش میں تو 47% لوگ سپورٹ کے ورودھ میں ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکی سماج میں کس بری طرح اس مسئلے پر مت بھید ہیں۔ وہیں 50% لوگ کہتے ہیں کہ بائیڈن اب یوکرین کی جنگ کو لیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 41% کا کہنا ہے کہ بائیڈن اس جنگ کو لیڈ کرتے رہیں۔ امریکہ اب تک درجنوں ارب ڈالر کی سینک سہایتا یوکرین کو دے چکا ہے۔ حال ہی میں بائیڈن پرشاسن نے یوکرین کو 31 ابرامز ٹینک دیے ہیں، مگر یوکرین کی مانگ ہے کہ سہایتا بڑھائی جائے۔ پترکاروں نے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن سے پوچھا کہ کیا امریکہ یوکرین کو F-16 یدھک ویمان دے گا تو انہوں نے صاف شبدوں میں یہ جواب دیا۔ NBC نے اس کے بعد بھی جب اس پر ڈیبیٹ کی تو ٹیکہ کار کا کہنا تھا کہ امریکہ بالکل دے سکتا ہے۔ امریکہ اس سے پہلے پیٹریٹ اور ٹینک یوکرین کو دینے کا بھی کھنڈن کر رہا تھا، مگر امریکہ نے دے دیا۔ ٹیکہ کار کا کہنا تھا کہ اگر آپ اس سے پہلے کے امریکی ادھیکاریوں کے بیانوں کو دیکھیں تو وہ پیٹریٹ میزائل دینے کے لیے بھی منع کر رہے تھے، مگر انہوں نے دے دیے۔ नेटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत का कहना है कि अगर हालात बदलते हैं तो ये मुमकिन है कि अमेरिका यूक्रेन को और भी हथियारों की सप्लाई करे। पूर्व राजदूत का कहना था कि ये हो सकता है कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचे कि वो रूस के हमले का सामना करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो इस स्थिति में अमेरिका यूक्रेन को F-16 युद्धक विमान भी और लंबी दूरी के मिसाइल भी दे सकता है। बाइडेन प्रशासन को इस प्रकार काम करना चाहिए कि अमेरिका रूस के प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति न पैदा हो। यूक्रेन के लोग कहते हैं कि इस समय अमेरिका से हमारी बात चल रही है कि वो यूक्रेन को 24 F-16 युद्धक विमान दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से मांग की है कि उसे 300 किलोमीटर से अधिक रेंज के मिसाइल दे। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत की राजधानी दिल्ली में लगी प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी में भारी भीड़ जुट रही है। वहीं इस प्रदर्शनी में ईरान की 5 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो प्रदर्शनी में आए भारतीय व्यापारियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
प्लास्ट इंडिया नामक विश्व में प्लास्टिक उत्पादों और प्रौद्योगिकी की 11वीं प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई गई है, जिसमें इस्लामिक गणतंत्र ईरान सहित विश्व के 40 देशों के लगभग 1800 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न देशी और विदेशी कंपनियां प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने वाली उन्नत प्रौद्योगिकी को भी प्रदर्शित कर रही है और इस संदर्भ में व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाश कर रही है। ईरान की पेट्रोकेमिकल की 5 बड़ी कंपनियां, जिनमें 3 सरकारी और 2 निजी क्षेत्र की हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। ईरान की एक प्रदर्शक तहमीन सादात फतही ने कहा कि हमारी कंपनी विभिन्न ग्रेड की पॉलिथीन तैयार करने के क्षेत्र में सक्रिय है। हम लगभग 10 वर्षों से पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्यात कर रहे हैं और हमारा अधिक ध्यान चीन, भारत, ईरान के पड़ोसी देशों और यूरोप के बाजारों पर है। भारत प्लास्टिक उपकरणों और उत्पादों का एक बड़ा बाजार है और ईरान इस बाजार को अपने प्लास्टिक उत्पादों और प्रौद्योगिकी में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण समझता है। ईरानी प्रदर्शक शाहीन दिलदार ने कहा, ईरान की पर्शियन गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और मध्य पूर्व में इस कंपनी को दूसरा और विश्व में 23वां स्थान प्राप्त है। हम अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादों को विश्व के ज्यादातर देशों में निर्यात करते हैं और भारत का बड़ा बाजार भी हमारे लिए काफी महत्व रखता है। ये प्रदर्शनी प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने के लिए नई प्रौद्योगिकी, नई संभावनाओं और नए नवाचारों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच समझा जाता है। प्लास्टिक उपकरणों की इस प्रदर्शनी में, जो 4 वर्षों के अंतराल के बाद लगाई गई है, ईरान के स्टॉलों पर भारतीय और विदेशी ग्राहकों की भीड़ है। भारतीय व्यापारी जयेश जैन कहते हैं,
प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इम्पोर्ट करते हैं और ट्रेडिंग का हमारा बिजनेस है, तो अभी ईरान से हम काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इधर काफी प्लास्ट इंडिया में आए तो काफी स्टॉल्स उनके दिख रहे हैं हमको।
भारतीय व्यापारियों का कहना है कि यद्यपि वे ईरान से व्यापार में काफी रुचि रखते हैं, परंतु व्यापार के मार्ग में कुछ कठिनाइयां भी हैं। हीरालाल जैन,
ईरान को पसंद करते हैं, वहाँ का प्राइस थोड़ा डाउन रहता है, तो इंडिया वाले डायरेक्ट लेना चाहेंगे, लोकल प्रोडक्ट से वो सस्ता रहता है ईरान का, और बहुत काफी सामान है, लेकिन ये कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम होने से डायरेक्ट वहाँ से करने में डर लगता है।
प्लास्टिक उत्पादों की ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 5 फरवरी तक जारी रहेगी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों, अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, स्वतंत्रता प्रभात पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिज़वी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति की महान सफलता में विलायत फकीह अर्थात धार्मिक नेतृत्व की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता को 44 साल बीत रहे हैं, लेकिन आज भी ये क्रांति क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में ध्यान का केंद्र बनी हुई है। इसी प्रकार क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका असर है। इस्लामिक क्रांति इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में सफल हुई। उन्होंने इस क्रांति को सफल बनाकर इतिहास रच दिया। 20वीं शताब्दी की इस महाघटना ने एक और दुनिया में छाई दो ध्रुवीय व्यवस्था को उलट दिया तो दूसरी ओर ऐसे शासन को जड़ से उखाड़ फेंका जो बाहरी शक्तियों पर निर्भर बहुत मजबूत शासन समझा जाता था और उसे बड़ी शक्तियों की ओर से समर्थन भी हासिल था।
इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ईरान जैसे देश में जो स्ट्रेटेजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अहम है, ऐसा बड़ा राजनीतिक बदलाव लाए जो जनता पर आधारित है। इस्लामिक क्रांति ने जो मुसलमान देशों में गहरी जागरूकता पैदा की उससे गहरे राजनीतिक बदलाव व राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि मुहैया हुई। इस क्रांति से एक बार फिर इस्लाम को दुनिया में एक निर्णायक शक्ति के रूप में पहचानवाया। वैचारिक आधार, नेतृत्व क्षमता और क्रांति से उत्पन्न गहरे बदलाव ने बहुत से राजनैतिक पंडितों को क्रांति की अवधारणा के बारे में पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ इस बात का अवसर देती है कि हम इस बात को फिर से समझें कि ये क्रांति किस तरह कामयाब हुई, क्योंकि इस क्रांति के ईरान सहित दुनिया पर गहरे प्रभाव के मद्देनजर इसमें युवा पीढ़ी को बताने के लिए बहुत कुछ है।
मानव जीवन के इतिहास की पड़ताल करने से पता चलता है कि स्वार्थों में संघर्ष और विश्वासों में मतभेदों के कारण मनुष्य हमेशा सही और गलत के दो मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है और ये लड़ाई गलत पर सही की पूर्ण जीत तक जारी रहेगी। जैसा कि पवित्र कुरान में इस बात को साफ तौर पर कहा गया है, सही और गलत के बीच की इस लड़ाई को अलग अलग कालों में अलग अलग शक्तियों ने प्रभावित किया है। निस्संदेह सभी समाजों की शक्ति उसके नेतृत्व और नेता की भूमिका पर निर्भर करती है। 1979 में इस्लामिक क्रांति की जीत के साथ नेतृत्व की अवधारणा और सामान्य रूप से सत्ता की अवधारणा बदल गई।
दोस्तों, ये परिवर्तन नेता को लोगों से जोड़ने वाली श्रेष्ठ शक्ति के प्रकार से अधिक था, क्योंकि नेता लोगों के साथ था। क्योंकि ईरान की इस्लामी क्रांति की प्रगति और जीत के दौरान इस्लामी न्याय शास्त्र के ढांचे के भीतर नेतृत्व इस्लामी क्रांति की जीत लाने में सक्षम था। मूल रूप से ईरान की इस्लामी क्रांति की जीत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक धार्मिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित इस्लामी व्यवस्था की स्थापना रही है। वली फकीह ने न केवल क्रांति की विजय अवधि के दौरान बल्कि उसके बाद के कई संकटों पर काबू पाने में भी एक अनूठी भूमिका अदा की।
शिया धर्म में एकेश्वरवाद, ईश्वरीय दूत अर्थात नबियों और कयामत अर्थात प्रलय के दिन के अलावा न्याय और इमामत जैसे दो अन्य सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कौम और मिल्लत बिना किसी नेतृत्व या रहबर के अपनी सामाजिक जिंदगी को बाकी नहीं रख सकती, क्योंकि अपने धार्मिक और दुनियावी कार्यों को अंजाम देने के लिए वो हर कदम पर एक ऐसे रहबर की मोहताज है जो उनके दुनियावी या दीनी कार्यों की रहबरी और मार्गदर्शन करे। ये चीज़ सारे इंसानों के अंदर पाई जाती है और एक प्राकृतिक चीज़ है, इसलिए ईश्वर ने हर कौम के लिए एक रहबर और सही रास्ते का मार्गदर्शन करने वाला रखा है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान बिना रहबर के एक कदम भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकता। एक ईश्वरीय दूत का होना जरूरी है कि जिसके वजूद से कौम को मजबूती मिले और उसी की लीडरशिप में वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके।
दोस्तों, इसीलिए वली फकीह का होना इसीलिए भी जरूरी है कि अगर इस्लामी समाज में ऐसा नेतृत्व और कानून के रखवाले, अमानतदार सेवक, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों के तौर पर मौजूद न हो तो दीन में हेरा फेरी की संभावना बढ़ जाती है। इस्लामी आदेश और सुन्नतें उलटफेर का शिकार हो जाती हैं और सुन्नत के नाम पर नई नई चीज़ें इस्लाम में दाखिल होने लगती हैं। साथ ही अधर्मी लोग बहुत सी चीज़ें कम कर देते हैं और फिर एक नए अंदाज से मुसलमानों के सामने उसको इस तरह से पेश करते हैं कि उस परिवर्तन के बिना दीन बाकी ही नहीं रह सकता।
विलायत फकीह अंतिम मुक्तिदाता हजरत मेहदी की अनुपस्थिति के दौरान इस्लामी शासन प्रणाली के लिए एक शब्द है और वली फकीह का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्लामी समाज का नेतृत्व करना जो न्याय शास्त्र में इश्तेहाद की स्थिति तक पहुंच गया हो और जिसमें इस्लामी समाज का नेतृत्व करने की तमाम विशेषताएँ और शर्तें मौजूद हों। इसके अलावा इस्लामी विचार के अनुसार समाज में एक शासन का अस्तित्व एक आवश्यक चीज़ है और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उत्तराधिकारी इमामों की उपस्थिति के समय के लिए विशेष नहीं है। इस्लाम के नियमों की व्यापकता और निरंतरता के लिए ये आवश्यक है कि शिया मुसलमानों के 12वें इमाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की अनुपस्थिति में सरकार का अस्तित्व भी एक आवश्यक चीज़ है। इस संबंध में पैगंबर इस्लाम ने धर्म गुरुओं और विद्वानों को अपना खलीफा और पैगंबरों का उत्तराधिकारी बताया है और हजरत अली ने भी उन्हें लोगों का शासक माना है।
कुल मिलाकर वली फकीह कोई राजनीतिक का परिभाषिक शब्द नहीं बल्कि ये इस्लामी और कुरानी विलायत प्रणाली का हिस्सा है। विलायत फकीह इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की गैबत में उनकी विलायत का ही सिलसिला है और उसका नतीजा यह है कि इस्लामी समाज की हुकूमत का अंदाज भी इस्लामी और शरई होना चाहिए। इस्लामी शरीयत के फकी अहकाम के विरुद्ध हर कानून अमान्य है, इसीलिए इस्लामी हुकूमत का शासक ऐसा इंसान हो जो न केवल फिक्ह की जानकारी रखता हो बल्कि उसमें इज्तिहाद की हद तक महारत रखता हो, जो फिक्ही अहकाम को उसके असली स्रोतों से यानी आयत व रिवायत से निकालने की योग्यता रखता है। ऐसे इंसान को इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने गैबत के दौर में अपना आम नायब यानी उत्तराधिकारी बनाया है और जनता को उसकी आज्ञा पालन का आदेश दिया है। वली फकीह वही हाकिम शरा है जो दुनियावी शासकों की तरह नहीं होता बल्कि वो खुद फिक्ह का पालन करता है और इस्लामी फिक्ह का जरा सा उल्लंघन उसकी विलायत को अमान्य कर सकता है।
इस्लामी क्रांति के गठन के दौरान इमाम खुमैनी वली फकीह की भूमिका के प्रभारी थे। वो क्रांति के सूत्रधार थे और उन्होंने क्रांतिकारी ताकतों का नेतृत्व और उन्हें संगठित किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे हालात में ऐसी शासन व्यवस्था के विचार को पेश किया जब धर्म विरोधी विचारधारा लेइसिज्म और धर्म को राजनीति से अलग रखने वाली विचारधारा सेक्युलरिज्म राजनीति के मंच पर सक्रिय थी। यहाँ तक कि धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के बीच भी धार्मिक प्रजातंत्र के विचार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। जैसे शिया संप्रदाय के तत्कालीन वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला नाइनी और सुन्नी विचारक अब्दुल रहमान कवाकेवी जैसी हस्ती भी धार्मिक प्रजातंत्र के समर्थक नहीं थी। ایسے حالات میں ایک دھرم گرو اس طرح کے وچار کو پیش کرے اور اسے لاگو کرنے کی دشا میں قدم اٹھائے۔ دھارمک پرجاتنتر اور خلافت کو جیوت کرنے کے وچار کے بیچ بہت فاصلہ تھا۔ اسی پرکار دھارمک پرجاتنتر نے شیعہ دھرم گروؤں کے بیچ پرچلت اس وچار سے بھی دوری بنائے رکھی، جس کا ماننا تھا کہ مانوتا کے انتم موکشداتا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے کال میں شاسن کا گٹھن اویدھ ہے۔
امام خمینی نے دھارمک پرجاتنتر یا اسلامی گڑتنتر کا وچار پیش کر کے ان وچارکوں اور اپنے بیچ ریکھا کھینچ دی جو اسلام اور پرجاتنتر کے بیچ سانٹ گانٹ کی کوشش میں تھے۔ امام خمینی کا ماننا تھا کہ اسلام کے سوبھاؤ میں پرجاتنتر ہے، اسلام پرجاتنتر کا سمرتھک ہے۔ اس دھرم میں جنتا کی رائے کو اہمیت ایک دکھاوا نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جس کی جڑ اسلامی سدھانتوں سے ملی ہوئی ہے۔ امام خمینی کی نظر میں اسلام میں پرجاتنتر اور دھارمک پرجاتانترک ویوستھا سنیوگ وش گھٹنا نہیں ہے جسے پشچم سے لیا ہو اور اسے زبردستی آپس میں سمنوت کیا ہو، بلکہ پرجاتنتر اور دھرم ایک دوسرے کے ابھن انگ ہیں۔ اس ویوستھا میں امام مہدی علیہ السلام کی انوپستھتی میں سرکار کے گٹھن کا آدھار جنتا کی رائے ہے۔ امام خمینی کی نظر میں امام مہدی علیہ السلام کی انوپستھتی میں ورشٹ دھرم گرو کی حکومت وید ہے، لیکن اس کا گٹھن جنتا کی مرضی پر نربھر ہے، یہاں تک کہ جنتا کی رائے کے بنا ورشٹ دھرم گرو جس میں سبھی شرطیں پائی جاتی ہوں سرکار کا گٹھن نہیں کر سکتا۔
اسلامی کرانتی کی مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک جو دشمنوں کی سازشوں کے باوجود چار دشکوں تک سفلتا پوروک جاری رکھنے اور آگے بڑھنے میں سکشم رہی ہے ولایت فقیہ کا سدھانت ہے۔ یہاں پر ایک اور بندو دھیان دینے یوگیہ ہے، وہ یہ کہ جس پرکار کسی بھی مجتہد اور مرجع تقلید کا فتویٰ دیشوں کی سیماؤں تک سیمت نہیں رہتا، اسی طرح ولی فقیہ کی ولایت بھی کسی سیما سے سیمت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں آج کی طرح پرچلت دیشوں کی سیماؤں کی کوئی کلپنا نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں پوری دنیا ایک دیش کی طرح ہے۔ یہ اور بات کہ اسلام کی یہ کلپنا ابھی اپنا واستوک روپ دھارن نہیں کر سکی ہے اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ پوری طرح سے ہو پائے گا۔
لیکن جب تک جتنا سمبھو ہو ولی فقیہ کی ولایت کا دائرہ بڑا رہے گا، حالانکہ اسپشٹ ہے کہ دوسری سرکاروں اور ویشوک قانونوں کے کارن دوسرے دیشوں میں ولی فقیہ کا آدیش پالن اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اسلامی حکومت کی سیما کے اندر ہوگا، لیکن دوسرے دیش کے رہنے والوں کو ولی فقیہ کے ان آدیشوں کا اوشیہ پالن کرنا چاہیے جو اس نے ویشوک استر کے لیے دیے ہوں، اور ان کے پالن میں ناگرکوں کے اپنے دیش کی اور سے کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو۔ موجودہ دور میں ایران میں اس ولایت فقیہ کے ذریعے اسلامی شاسن کو استھاپت کیا گیا ہے جس نے بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور فقہا نے بھی اس حکومت کو مضبوطی دی ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مسلمانوں کے ولی فقیہ ہیں۔
تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
شروع اب پرستت ہے اگلا کاریکرم آج کی بات۔
آج کی بات، دوستو کاریکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے، رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کاریکرم میں ہم بھارت میں پترکار اور پترکارتا کی استھتی پر چرچا کریں گے۔ ہمیں آشا ہے آپ کو ہمارا آج کا کاریکرم ضرور پسند آئے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ दोस्तों, भारत में पत्रकार और पत्रकारिता की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब तो अलग अलग नामों से ही मीडिया को जाना जाने लगा है। रिपोर्टों की माने तो लगभग सभी न्यूज चैनल और समाचार पत्र किसी न किसी उद्योगपति की संपत्ति बनकर रह गए हैं। अब जमीन पर उतरकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार बहुत कम ही दिखाई देते हैं। आम लोगों के सवाल, सरकार से सवाल और जमीनी सच्चाई को बयान करने वाला मीडिया बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में ऐसे पत्रकार नहीं रह गए हैं कि जो आम लोगों की समस्याओं को उठाएं, हैं पर वो उस मीडिया हाउसेस का हिस्सा नहीं है जिसे स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। यूट्यूब, फेसबुक और छोटे छोटे स्थानीय चैनलों और समाचार पत्रों में ऐसे बड़े बड़े पत्रकार दिखाई देते हैं कि जिनकी वजह से आज भी पत्रकारिता जिंदा है, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जिसके वो हकदार हैं। इस बीच अब भारत की सरकार ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले सच्चे पत्रकारों पर भी लगाम लगाने के लिए एक नियम कानून लागू करने का मन बना लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं एक समय भारतीय मीडिया के प्रमुख चेहरों में रहे आशुतोष गुप्ता।
देश के अंदर मीडिया का हाल वैसे ही माशाल्लाह है, यूं ही उनको गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। लगभग पूरा का पूरा मीडिया, खासतौर पर टेलीविजन चैनल, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की तारीफ में वक्त जाया करते हैं, विपक्ष को सिर्फ तीखी आलोचना करते हैं। और तो और, जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो ध्रुवीकरण का जो पूरा प्रोग्राम है उसको भी बदस्तूर लागू करते रहते हैं। लेकिन अब एक और संकट आ गया है इस मीडिया के ऊपर। संकट यह है कि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को भी ऐसा लगता है जैसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कानून है उसके नियमों में बदलाव की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक में आया है, सार्वजनिक हुआ है। उस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, वहां पे जो फेक न्यूज है उसको डिटरमाइन करने का अधिकार सरकार की जो एजेंसी है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो करेगी। और वो अगर पाती है कि कोई न्यूज फेक न्यूज है तो उसको हटाने का या टेक डाउन करने का इंस्ट्रक्शन भी देगी और उसको लागू करना अनिवार्य होगा। अब यह एक ऐसी स्थिति है कि सरकार अगर यह तय करेगी कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, यह अधिकार अगर सरकार के पास चला जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर यह सबके लिए चिंता का विषय हो जाता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात।
वैसे भारत सरकार के नए ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो चुका है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी सरकार से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा फर्जी माने जाने वाले समाचारों को हटाने के लिए निर्देश देने वाले IT नियमों में संशोधन के मसौदे को हटाया जाए। गिल्ड ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फर्जी समाचारों के निर्धारण का जिम्मा केवल सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है। गिल्ड को लगता है कि ये ड्राफ्ट संशोधन प्रेस की सेंसरशिप के समान है। इस संबंध में भारत के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग से जब ये पूछा गया कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन कितना सही है, साथ ही एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो कहा है कि क्या नया संशोधन प्रेस का गला घोटने जैसा है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? जवाब में श्रवण गर्ग कहते हैं,
जो सरकार कर रही है मैं उसको आइसोलेशन में नहीं देखता कि वो प्रेस के लिए ऐसा कर रही है। आपकी बहस अगर न्यायपालिका को लेकर होती तब भी यही बात होती कि वो न्यायपालिका के साथ क्या कर रही है। कॉलेजियम की सिफारिशों को लेकर जो चल रहा है वो हमारे सामने है। तो मामला केवल ये मीडिया का नहीं है, मैंने अभी हाल ही में कहा भी है एक डिबेट में, जो चल रहा है वो उसका जो संबंध है वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी से है। और ये जो वर्ष है 2023 और 24 का, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी जो लड़ाई है लोकतंत्र को लेकर वो एक निर्णायक दौर में पहुंच रही है, और ये दो साल हमारे लिए काफी कठिन होने वाले हैं। अभी हम मीडिया को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कई जगह इस तरह के अब प्रहार धीरे धीरे प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल जो है उनको चेंज करने को लेकर या बेसिक फीचर्स को चेंज करने को लेकर जो सभापति हैं या वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जिस तरह से आक्रमण शुरू किया दिसंबर में, वो किस जगह पहुंच गया है। आपको इस चीज पर देखना चाहिए कि सरकार फेक न्यूज को खत्म करने के इरादे जो हैं कितने ईमानदार हैं। जब से आई है ये सरकार, इसने पत्रकारों के लिए या मीडिया के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर आप देखें तो पत्रकार जो दिल्ली के हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, सीनियर करेस्पोंडेंट जो हैं, वो किसी भी मंत्रालय में नहीं जा सकते। अब वो सीधे जाकर खबर प्राप्त नहीं कर सकते। आप अगर 2014 के पहले की स्थिति देखें तो एक तरह की आजादी थी मीडिया के लोगों को कि वो कहीं भी जाकर किसी भी, आज कोई ब्यूरोक्रेट बात नहीं कर सकता पत्रकारों से, आज कोई मंत्री बात नहीं कर सकता, और प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी स्थिति में अगर मीडिया में जिंदा रहना है, अखबार चलाना है, ऑनलाइन जर्नलिज्म करना है, तो पत्रकारों को क्या करना चाहिए।
वैसे बात केवल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है, स्वयं भारतीय सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार लगातार निशाना बना रही है। ऐसा लगता है कि भारत के मूलभूत स्ट्रक्चर को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय भारत में ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि जो सरकार चाह रही है केवल वही हो रहा है। अगर कोई चीज सरकार को पसंद नहीं आती तो उसके खिलाफ किसी न किसी बहाने से कोई न कोई कार्रवाई हो ही जाती है। हाल ही में बीबीसी द्वारा गुजरात दंगे को लेकर प्रकाशित गई डॉक्यूमेंट्री इसका ताजा उदाहरण है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सरकार हर चीज पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, और अगर ऐसा है तो वो कितना सही है। इस सवाल के जवाब में भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े कहते हैं,
वैसे कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहती है, और न सिर्फ कंट्रोल रखना चाहती है, अपने लोगों को अपनी भाषा बुलवाना चाहती है, अपने लोगों से अपनी भाषा बुलवाना चाहती है। तो अब अगर ये तय करेंगे कि भाई जज कौन है, कौन होंगे, कैसे लोग होंगे, उनको ये भी तय करना है कि कौन से पत्रकार क्या छापेंगे और किसे मान्यता दी जाएगी, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एक गेम प्लान है। और ऐसा शायद ही पहले भारत के इतिहास में हुआ है, और जहां तक मेरी जहन में एक ही ऐसा उदाहरण आता है, वो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ होती है, तो सच्चाई की मिनिस्ट्री जो हमेशा झूठ बोलती है, और पर वो साबित करती है कि जो वहां का जो नेता था वो जो भी कहता था वो सही था। तो अगर कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ हो, उसको भी वो फाड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर लेते थे सभी कुछ। तो अब ये है कि अगर इस देश में सत्यमेव जयते के देश में सत्य वही होगा जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहेगा कि सत्य है, और फेक न्यूज की आप मुझे डेफिनेशन दे दीजिए, क्या ये कहना कि अच्छे दिन आएंगे फेक न्यूज है या नहीं है। अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है, अगर मैं वो कहूं तो वो फेक न्यूज है या नहीं है। तो ये हर बात में अपनी एक दबदबा बना रखना, एक जो कंट्रोल फ्रीक थियोरी ऑफ गवर्नमेंट जो चल रहा है उसी का एक हिस्सा है।
Thank you. इस समय भारत में जो संवैधानिक संस्थानों की स्थिति है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र वास्तव में खतरे में। पहले कभी ऐसा होता दिखाई देता था तो इस देश के वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया पूरी तरह सामने आ जाते थे और ऐसा लगता था कि हाँ, भारत में मीडिया इस देश के चार स्तंभों में से एक है जो लोकतंत्र को बचाने की स्थिति में है। लेकिन अब माहौल बदल चुका है और नए संशोधन के जरिए तो मीडिया को पूरी तरह पिंजरे का तोता बनाने की तैयारी हो गई है। कुल मिलाकर जहां नए संशोधन प्रस्ताव को लेकर विभिन्न मीडिया संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है, वहीं एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अलावा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, NBDA, प्रेस एसोसिएशन, DGPUB, फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसे मीडिया संगठनों ने भी सरकार से संशोधन को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कई विपक्षी दलों ने भी IT नियम 2021 के मसौदे में संशोधन की आलोचना कर उन्हें अत्यधिक मनमाना और एकतरफा कहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत का संविधान सभी भारतीयों को कठिन परिश्रम से अर्जित स्वतंत्रता का अच्छी तरह से उपयोग करने के समान अधिकारों का वादा करता है। इन अधिकारों के साथ साथ संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी के लिए न्याय की गारंटी देता है। ये मूलभूत मूल हैं जिन पर संविधान टिका हुआ है, लेकिन आज इन्हीं मूल्यों को खतरे का सामना करना पड़ा है। अब समय आ गया है कि सभी को अपने संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और यही देश भक्ति का सच्चा प्रतीक है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.